अध्याय 26 शक और पहलव। साधन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी राज्य का अंत हो गया और उसके स्थान पर शक शासन नामक एक अन्य विदेशी जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अनेकानेक भारतीय ग्रंथों में शकों का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत दोनों में यवनों और शकों का उल्लेख मिलता है। कात्यायन और पतंजलि ने भी शक जाति का नाम लिया है। मनु भी शकों से परिचित है। आंध्रों के पतन के पश्चात पुराणों का कथन है कि बर्बर जातियां पृथ्वी पर राज्य करेंगी और इन जातियों में वे शक मुरुंड का नाम लेते हैं। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण के पश्चात शकों ने आक्रमण और उनके मथुरा प्रदेश पर आधिपत्य वर्णन मिलता है। कालांतर में देवीचंद गुप्तम हर्षचरित और काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ भी शकों का उल्लेख करते हैं। ये सब संस्कृत ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त प्राकृत ग्रंथों में भी शकों का वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ जैन प्राकृत ग्रंथ कालिकाचार्य कथानक का कथन है कि शक नरेश शाही कहलाते हैं, जिनसे ने अपने ग्रंथ हरिवंश में लिखा है कि शक अपने आधे शीश को भी मुड़वाते थे। यह लेखक शक शासक नववाहन और पान का भी उल्लेख करता है। बौद्ध साहित्य में भी यत तत्र शकों का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ मिलिंद पनहों में शक जाति का उल्लेख है। संबंध पाशादिका में मुद्राओं के साथ रुद्रदामन का उल्लेख मिलता है। संभवतः यहाँ शक नरेश रुद्रदामन का परिचय मिलता है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त हेरोडोरस ट्रैबो जस्टिन प्लस के लेखक टाल्मी इसिडोर आदि चीनी लेखकों की रचनाओं भी शक इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालती हैं। इस शक इतिहास के निर्माण में पालची एवं भारतीय अभिलेखों से बड़ी सहायता मिली है। ये अभिलेख संख्या में इतने अधिक हैं कि इनका यहाँ एक स्थान पर संग्रह करना समीचीन नहीं है। मुद्राओं का महत्व भी बहुत कम नहीं है। पश्चिमी भारत में रुद्रदामन प्रथम के पश्चात जितने भी शक क्षत्रप हुए उनके सबके नाम तथा शासन काल एकमात्र मुद्राओं से ही विदित होते हैं। तक्षशिला के शक नरेशों के उत्तराधिकारी क्रम के अनुमान भी एकमात्र मुद्राओं के आधार पर ही किया जाता है। यदि मुद्राएं न होती तो भूमक ऐसे महत्वपूर्ण शक नरेशों का नाम तक अज्ञात रहता। शकों का प्रस्थान चीनी ग्रंथों शीकी और सीन हानशू से प्रकट होता है कि मंगोलिया के समीप यूची नामक एक जाति रहती थी। इसी के पड़ोस में रहने वाली एक अन्य जाति होंगनू ने लगभग 176 से 74 ईस्वी पूर्व इस पर आक्रमण कर दिया और इसके राजा को मार डाला। परास्त होने पर यूची जाति नवीन प्रदेश की खोज में पश्चिम की ओर चल पड़ी। पश्चिमी देश में जजॉर्ट्रीज के समीप रहने वाली शक नामक एक अन्य जाति पर उसने आक्रमण किया और उसके प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चीनी लेखों में शक जाति के लिए शई नाम का प्रयोग किया गया है। परास्त होने पर यह शक जाति भी नवीन प्रदेशों की खोज में दक्षिण की ओर चली। इसकी कुछ शाखाएं तो यत्र तत्र बिखर गईं और कुछ भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में प्रविष्ट हुईं। की पीन चीनी लेखों से प्रकट होता है कि दक्षिण दिशा में प्रस्थान करते हुए शक की पीन आए और उन्होंने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। की पीन के समीकरण के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। चीनी लेखों से एकमात्र इतना ही प्रकट होता है कि कीपीन के उत्तर पश्चिम में ताहिया था और दक्षिण पश्चिम में बुई शानली था। स्टेन कोनोवो और राय चौधरी का मत है कि इस भौगोलिक स्थिति से प्रकट होता है कि कीपीन कापिश प्रदेश था, परंतु समीकरण को ग्रहण करने से कुछ कठिनाइयां होती हैं। चीनी लेखकों का कथन है कि कीपीन समतल और उष्ण था, परंतु वेनसांग का कथन है कि कापिश शीत प्रधान और झंझा प्रधान था। उसके अतिरिक्त कापिश पर्वतीय होने के कारण समतल भी नहीं हो सकता। क्लेप्राथ और टॉरन ने कीपीन का समीकरण काबुल के साथ किया है। रेप्सन का कथन है कि कीपीन काबुल नहीं हो सकता क्योंकि काबुल घाटी पर उस समय भी यूनानियों का आधिपत्य था। यही नहीं, तत्कालीन चीनी लेखों में काबुल के लिए काओ फू नाम मिलता है, कीपीन नहीं। ऐसी अवस्था में कुछ विद्वानों के मतानुसार कीपीन से कश्मीर और पंजाब का समीपस्थ प्रदेश समझना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, परंतु यह मत भी निर्विवाद नहीं है। मार्ग चीनी ग्रंथ हांशु से प्रकट होता है कि अपने मूल निवास स्थान पर छोड़कर कीपीन जाते समय शक हिक्टू से होकर गए थे। विली ने हिक्टू को हिंदू कुश माना है। फायान के वर्णन से प्रतीत होता है कि हिंटू कर्दो के पश्चिम में सिंधु नदी पर स्थित था, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि शक भारतवर्ष में उत्तरी मार्ग से न आकर दक्षिणी मार्ग से आए थे। उदाहरणार्थ थॉमस मॉडर का कथन है कि शक न तो अफगानिस्तान से आए और न कश्मीर से, वरन वे सिंध और सिंध नदी की घाटी से होकर आए थे। इस दक्षिणी मार्ग का अनुसरण करने में वे पूर्वी ईरान से होकर ही आए होंगे। निस्संदेह दक्षिणी मार्ग के पक्ष में कुछ साक्ष्य हैं। पहला, मथुरा लायन कैपिटल अभिलेख में सर्वश शक स्तनश हुए शब्द मिलते हैं। कनिंघम और यूलर के मतानुसार इसका अर्थ है संपूर्ण सक स्थान के पुण्य के लिए। इसने अनुमान होता है कि सक सर्वप्रथम सक स्थान में ही आए थे। सक स्थान ही भारतवर्ष में उनका आदि निवास स्थान था और यहीं से वे अन्यत्र गए थे, परंतु भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में बस जाने के पश्चात भी वे अपने आदि निवास स्थान को भूलने न थे। दूसरा, अनेक शक छत्रपों के नाम काम के साथ दामन जुड़ा हुआ मिलता है, यथा जय दामन, जीव दामन, रुद्र दामन आदि। स्टेन कोनोव का मत है कि यह दामन शब्द ईरानी दमन से निकला है, अतः शक नामों में ईरानी प्रभाव परिलक्षित होता है। यदि शक ईरान से ना होकर कश्मीर से होकर आए होते तो फिर वह ईरानी प्रभाव कहाँ से आता। तीसरा, अनहेरी अभिलेख के अनुसार महाक्षत्रप युद्ध की पुत्री कादर्मक वंश की थी। रैप्सुन महोदय का कथन है कि यह वंश नाम ईरान की कादम नदी से पड़ा है, अतः इससे भी शकों का ईरान के साथ संबंध सिद्ध होता है। चौथा, पेरिप्लस के अनुसार सीथिया और मेंबरस राज्य की राजधानी मीन नगर थी। इस नगर का नाम सक स्थान के मीन नगर से हुआ था। सक स्थान के इस नगर का उल्लेख इसिडोर ने किया है। इन साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान होता है कि शकों की एक शाखा पूर्वी ईरान से होते हुए दक्षिणी मार्ग से भारतवर्ष में प्रविष्ट हुई थी, परंतु यदि हम यह कहें कि समस्त शक दक्षिणी मार्ग से ही आए थे अथवा उन्होंने काठियावाड़ के उत्तर में भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश का आक्रमण न किया था जैसा कि फ्लिट महोदय का मत था, तो हमारा कथन असंगत होगा, क्योंकि पहला, चीनी लेखों के अनुसार शकों ने कीपीन पर अधिकार किया था। दूसरा, मार्कंडेय पुराण के अनुसार मध्य देश में शकों की बस्ती थी। तीसरा, सिंधु प्रदेश में शक मुद्राएं अधिक संख्या में नहीं मिलती। ऐसी परिस्थिति में यही निष्कर्ष स्वाभाविक प्रतीत होता है कि शकों की एक शाखा उत्तरी मार्ग से आकर कीपीन में बसी और दूसरी शाखा दक्षिणी मार्ग से आकर पूर्वी ईरान से गुजरती हुई शक स्थान में बसी। इस प्रकार शक प्रस्थान दो मार्गों से हुआ। शकों की शाखाएं, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में आकर बसने वाले कोश की दो शाखाएं थी। प्रथम शाखा शैवेंग कहलाती थी। वेंग महोदय के अनुसार बैक का अर्थ है, वेंग का अर्थ है राजा, अतः सुई वेंग का साधारण अर्थ होता है शकों का राजा। इस प्रकार शैवेंग से शकों की किसी विशेष शाखा का बोध नहीं होता, परंतु स्टेन कोनोव का मत है कि इससे विपरीत है। इस विद्वान के मतानुसार बैक का अर्थ स्वामी है। शैवेंग शकों की वही शाखा थी जिसके अधिपति उसके स्वामी की उपाधि धारण करते थे। इसके विरुद्ध शकों की अन्य शाखाएं अन्य उपाधियां धारण करती थी। भारतीय साहित्य में भी स्वामी जाति का वर्णन मिलता है। स्टेन कोनोव ने इसे सुख मुरुंड जाति के नाम से पुकारते हैं। शकों की यही शाखा उत्तरी मार्ग से होते हुए कीपीन में आई थी। शकों की दूसरी शाखा दक्षिण मार्ग से आई थी। भारतवर्ष में आने से पूर्व यह पूर्वी ईरान में रही थी, अतः इस पर ईरानी प्रभाव प्रचुर मात्रा में पड़ा था। सुविधा के लिए हम इस शाखा को ईरानी शक के नाम से पुकार सकते हैं। कीपीन में शैवेंग चीनी लेखों से प्रकट होता है कि कीपीन के ऊपर शक मुरुंड शाखा ने अधिकार कर लिया था। चीनी ग्रंथ सी हांशु के अनुसार कीपीन का शासक वो ताउलाओ क्रूर प्रकृति का मनुष्य था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शासक हुआ। इसके शासन काल में चान के गवर्नर वेनजुंगकू के शासक के पुत्री मोफुक के साथ संधि कर ली। दोनों के सम्मिलित सेनाओं ने कीपीन पर आक्रमण किया, उसके शासक को मार डाला। तत्पश्चात येन मोफुक कीपीन का शासक बना। यह घटना चीनी सम्राट वांटी के शासन काल में घटी थी। इस प्रकार पूर्व 73 के लगभग कीपीन के शक मुरुंड शासन का अंत हो गया था। तान महोदय उपयुक्त चीनी उद्धरण का अन्य अर्थ लगाते हैं। इनके अनुसार कीपीन का समीकरण काबुल के साथ और वु ताउ लाओ का समीकरण पेलिरिशिस के साथ होना चाहिए। पिन मोफू को हर्म्यूस समझना चाहिए। जुक कू का समीकरण यून क्यू अथन ओणिकी यूनानी नगर से होना चाहिए। इस प्रकार तान महोदय का निष्कर्ष है कि काबुल घाटी में शक कर्नल के राज्य का अंत हर्म्यूस ने किया था, परंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार उपयुक्त समीकरण में कल्पन ही अधिक है। पीछे कहा जा चुका है कि चीनी लेखों में काबुल की घाटी के लिए काओफू नाम मिलता है, किपिन नहीं। अतः ये विद्वान टन महोदय के मत को स्वीकार नहीं करते। उत्तरी भारत में मुरुंड अनेक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि भारत के एक विस्तृत प्रदेश पर शक मुरुंड शाखा ईसा की 3rd शताब्दी तक राज्य करती रही। जैन सिंहासना दा द्वात्रिशिका के अनुसार एक मुरुंड राज कान्यकुब्ज में राज्य करता था। हेमचंद के ग्रंथ अभिधान चिंतामणि से प्रकट होता है कि संपाक में मुरुंड रहते थे। अन्य साक्ष्य पाटलिपुत्र के ऊपर भी मुरुंड जाति के आधिपत्य की सूचना देते हैं। आवश्यक बृहद्वित्ति के अनुसार पाटलिपुत्र के एक मुरुंड राजा ने पुरुषपुर में अपना एक राजदूत भेजा था जो उस समय बौद्धों का एक प्रबल गढ़ था। इसी प्रकार पाटलिप्त प्रबंध का कथन है कि पाटलिप्त ने पाटलिपुत्र के मुरुंड राजा की भयंकर सिर पीड़ा की दवा की। सिल्वन लेवी महोदय ने चीनी साहित्य का एक उद्धरण दिया है जिसके अनुसार वी वंश के चीनी सम्राट के एक पदाधिकारी ने अपने स्वामी को यह सूचना दी थी कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की प्रधानता है और वहाँ म्यूलून राजा राज्य करता है। लेवी महोदय ने म्यूलून का समीकरण मुरुंड के साथ किया है। अन्य विदेशी लेखक भी भारतवर्ष में मुरुंड राज्य के साक्ष्य उपस्थित करते हैं। टॉलमी के अनुसार मुरुंडाई गंगा नदी के पूर्वी तट पर और सरयू की घाटी में स्थित है। इस कथन की पुष्टि ओपीएन नामक एक लेखक से होती है। वह कहता है कि मुरुंडी जाति गंगा के मैदान के निवासी थे। इन सब उदाहरणों से प्रकट होता है कि शक मुरुंडू ने काफी समय तक भारतवर्ष के एक विशाल प्रदेश पर राज्य किया था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी शक मुरुंडू का उल्लेख मिलता है। इससे प्रकट होता है कि वे चौथी शताब्दी में भी भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में विद्यमान थे। तक्षशिला के शक शासक मावेज तक्षशिला की खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की सतह से मार्शल महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि उस प्रदेश का सर्वप्रथम शक शासक मावेज था। उसकी कुछ मुद्राओं के ऊपर पार्थिया की मुद्राओं का प्रभाव दृष्टिगत होता है। इससे अनुमान होता है कि वह भारतवर्ष में उत्तरी मार्ग में आने वाली शक मुरुंड शाखा का वंशज न था वरन दक्षिणी मार्ग से आने वाली ईरानी शक शाखा का वंशज था। ईरानी शक शाखा ही पार्थिया के संपर्क में आई थी। परंतु इस मत के विरोध में स्टेनकोनोवो का कथन है कि मावेज का नाम मध्य एशिया प्रतीत होता है। इस आधार पर वह उत्तरी मार्ग से आने वाली शक मुरुंड शाखा का वंशज प्रतीत होता है। यदि ऐसा है तो वह कीपिंग के शक मुरुंडों से संबंधित रहा होगा। किसी समय लोहाई जैन नामक विदुषी ने यह मत प्रतिपादित किया था कि एजेज प्रथम की भांति मावेज पार्थियन था शक नहीं, परंतु आज अधिकांश विद्वान दोनों को ही शक मानते हैं। डॉक्टर अल्टेकर ने मत प्रतिपादित किया है कि मावेज प्रारंभ में पार्थिया के अधीन एक सामंत था। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने दो प्रमुख प्रमाण प्रस्तुत किए थे। पहला, मावेज की कुछ मुद्राओं पर एकमात्र राजा की उपाधि मिलती है। दूसरा, मावेज की कुछ मुद्राएं पार्थिया की मुद्राओं से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। यह संभव है कि पार्थिया नरेश मिथ्राडेट्स द्वितीय के पश्चात जब पार्थिया का केंद्रीय शासक निर्बल पड़ गया था तो उसके कुछ सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी हो। मावेज की तिथि के विषय में बड़ा मतभेद है। व्हाइटे हेड महोदय का मत है कि मावेज की कुछ मुद्राएं मिलती हैं, अतः उन्होंने मावेज को एंटिया कॉल्डी के काल के समीप ही रखा है। परंतु यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि मुद्राओं की समता के आधार पर निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उदाहरणार्थ मावेज की कुछ मुद्राएं यूनानी शाखा यूरुकेटाइडीज और डेमिटियस की मुद्राओं से भी मिलती है। परंतु फिर भी यदि कोई नहीं कहता कि मावेज का काल ई यूनानी शासकों के काल के समीप था। मावेज का काल निर्धारण बहुत कुछ तक्षशिला के ताम्रपत्र पर निर्भर करता है। इसमें निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं। पहला, महाराज मोंग नामक एक शक्तिशाली शासक था। दूसरा, छत्रप लिया कुचुलक और उसके अधीन उसका पुत्र महादानपति पतिक दोनों महाराज मोंग के अधीन थे। तीसरा, वह 78 में राज्य कर रहा था। फ्लीट को छोड़कर प्रायः समस्त विद्वानों ने महाराज मोंग का समीकरण शक नरेश मावेज के साथ किया है। एक अन्य अभिलेख मानसेरा अभिलेख में भी लियाक का नाम मिलता है। डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि तक्षशिला ताम्रपत्र और मानसेरा अभिलेख के दोनों लियाक एक ही व्यक्ति के नाम है। मानसेरा अभिलेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कीपिन के कुछ भाग पर मावेज का अधिकार रहा होगा, परंतु चीनी लेखों से प्रकट होता है कि कम से कम 32 ईस्वी पूर्व तक कीपिन पर पी मोफू का अधिकार था। इससे सिद्ध होता है कि 32 ईस्वी पूर्व के पश्चात ही मावेज का उदय हुआ होगा। अब रही तक्षशिला ताम्रपत्र में उल्लेखित 78 तिथि की बात, विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि यदि तिथि किस संवत की है। श्री आरपी चंद्रा का मत है कि मावेज ने स्वयं अपना एक संवत चलाया था। तक्षशिला ताम्रपत्र की तिथि मावेज संवत में ही है, परंतु यदि मावेज संवत की स्थापना होती तो इस संवत की अन्य तिथियां भी मिलती, परंतु ऐसा नहीं है। एकमात्र एक तिथि के लिए एक स्वतंत्र संवत की कल्पना करना स्वाभाविक है, परंतु तक्षशिला ताम्रपत्र की तिथि को विक्रम संवत की तिथि मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पुराने खरोष्ठी अभिलेखों की तिथियां अधिकांशतः विक्रम संवत में ही है। यदि हम तक्षशिला ताम्रपत्र की तिथि को विक्रम संवत की तिथि मानते तो यह निष्कर्ष निकलता कि मावेज 20वीं ईस्वी के तक्षशिला शासक था। तान महोदय कहते हैं कि यह संभव नहीं, क्योंकि 19 ईस्वी में तक्षशिला में गांडोफार्नीज राज्य कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांडोफार्नीज पश्चिमोत्तर भारत में किसी प्रदेश में 19 ईस्वी में राज्य कर रहा था, परंतु यह मानना आवश्यक नहीं कि वह 19 ईस्वी में तक्षशिला पर ही शासन कर रहा हो। संभवतः तक्षशिला उसने कुछ समय बाद जीता था। अभी तक के किए गए हमारे विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मावेश के शासन का काल प्रारंभ 30 ईस्वी पूर्व से पूर्व और उसका अंत 20 ईस्वी के पूर्व नहीं हो सकता था। इस निष्कर्ष की कुछ पुष्टि एक अन्य अभिलेख से भी हो जाती है, वह है मथुरा लायन कैपिटल अभिलेख। इस अभिलेख में महाक्षत्रपति महाक्षत्रप राजुल और उसके पुत्र क्षत्रप षोडश का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि तक्षशिला ताम्रपत्र और मथुरा लायन कैपिटल अभिलेख के पति एक ही व्यक्ति हैं। तक्षशिला ताम्रपत्र की तिथि 78 है, इसमें लिया कुशलक क्षत्रप है और उसका पुत्र पतीक उसके अधीन महादानपति है। परंतु मथुरा लायन कैपिटल अभिलेख की तिथि 72 है, इसमें पतीक को महाक्षत्रप कहा गया है। तो यह कैसे संभव है कि पतीक पहले अर्थात 14 ईस्वी में महाक्षत्रप हो, बाद को 20 ईस्वी में अपने पिता के अधीन महादानपति हो जाए। इस विषमता को देखकर कुछ विद्वान यह कहते हैं कि ये दोनों तिथियां एक संवत की तिथियां नहीं हो सकती। परंतु इस आपत्ति में कोई बल नहीं, क्योंकि मथुरा लायन कैपिटल अभिलेख एक ही समय उत्कीर्ण नहीं हुआ था, इसी से उनमें पूर्वापर्य नहीं है। मैर अभिलेख में कनिंगम महोदय ने मऊ नाम पढ़ा है या मऊ मोंग अथवा मावेश को हो सकता है। इस अभिलेख की तिथि 58 है, यदि इसे विक्रम संवत की तिथि माने तो मावेश की सर्वप्रथम तिथि 1 ईस्वी पूर्व हुई। यह गणना से मावेश का शासन काल 1 ईस्वी पूर्व से 20 ईस्वी तक होता। परंतु यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह निष्कर्ष पूर्णतः संदिग्ध नहीं है। मावेश का राज्य विस्तार तक्षशिला ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि तक्षशिला प्रदेश मावेश के अधिकार में था। इस ताम्रपत्र में उसके क्षत्रप लिया कुशलक का उल्लेख है जो मावेश के अधीनता में चुक्ष पर राज्य करता था। तक्षशिला उस समय पश्चिमी पंजाब में एवं गांधार का केंद्र था। तब पश्चिमी पंजाब और गांधार का पर्याप्त प्रदेश मावेश के अधीन रहा होगा। मानसिरा अभिलेख में भी मावेश के अधीन छत्रप लिया कुशलक का उल्लेख है, संभवतः कीपिंग का कुछ भाग जो मावेश के राज्य में सम्मिलित होगा। इस पर पहले शक मुंडो का अधिकार था, उसके पश्चात तू ताउलाओ उसके पुत्र तथा यू मोफू का। मावेश की कुछ मुद्राओं पर कापिश और नरेश टेलीफस की मुद्रा शैली का प्रभाव है। इस आधार पर तन महोदय का मत है कि मावेश ने कापिश पर ही अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार मावेश की कुछ मुद्राएं पुष्कलावती शैली की है। तदैक्शन महोदय ने निष्कर्ष निकाला है कि पुष्कलावती भी मावेश के अधीन था। मथुरा लायन कैपिटल पर स्टेन कोनोवो ने मुकी पढ़ा है, उसका समीकरण मोंग के साथ किया है। इस आधार पर कुछ विद्वान मथुरा पर भी मावेश का अधिकार मानते हैं, परंतु कोनो का पाठ संदिग्ध है। पुनः मथुरा में उस समय एक अन्य शक वंश राज्य कर रहा था। तान महोदय का कथन है कि मावेश ने मिनेंडर की एथियालिकस शैली की मुद्राओं का अनुकरण नहीं किया। इससे प्रकट होता है कि मिनेंडर के राज्य के सर्व प्रमुख भाग पर माच का अधिकार न था। परंतु यह तर्क अनर्गल है। मिलिंद पन्हो सियालकोट को मिनेंडर की राजधानी अवश्य बताता है, परंतु न तो यह नगर मिनेंडर के राज्य का प्रमुख केंद्र था और न यहाँ उसकी कोई टकसाल ही थी। यही कारण है कि सियालकोट प्रदेश में मिनेंडर की मुद्राएं कम मिलती हैं। उसकी अधिकांश मुद्राएं काबुल घाटी में ही पाई जाती हैं। इस प्रकार मावेश का राज्य कीपिन पश्चिम पंजाब और गांधार के कुछ भाग तक सीमित था। एजेज प्रथम मावेश के पश्चात तक्षशिला में एजेज का राज्य हुआ। यह एजेज जाति का था, इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एजेज की मुद्राएं विनोनीस से संबंधित हैं। विनोनीस का नाम और मुद्रा शैली पार्थियन है, अतः कुछ विद्वान विनोनीस के साथ साथ एजेज को भी पार्थियन मानते हैं। कुछ विद्वानों में स्टेन कोनो वो प्रमुख है, परंतु अन्य विद्वानों के अनुसार एजेज के नाम में कोई भी पहलवी प्रभाव विद्यमान नहीं है। अतः वशक नरेश था। एजेज को तक मानने वाले विद्वानों में रैपसन गार्डनर टार्ड मार्शल राय चौधरी आदि प्रमुख है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि एजेज एक नहीं दो हुए थे। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने निम्नलिखित प्रमाण दिए हैं। पहला, एजेज की कुछ मुद्राएं ऊपरी सतह पर मिलती हैं, परंतु कुछ उनसे अधिक नीची सतह पर। यदि एजेज एक होता तो संपूर्ण मुद्राएं साधारणतः एक साथ एक ही सतह पर मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक एजेज के कुछ समय पश्चात दूसरा एजेज उसी प्रदेश का राजा हुआ। भिन्न कालों में होने के कारण दोनों एजेज की मुद्राएं भिन्न भिन्न सतहों पर मिली हैं। दूसरा, एजेज द्वितीय की कुछ मुद्राएं गोडोफोनीस की मुद्राओं के साथ मिलती हैं। इससे प्रकट होता है कि गोडोफोनीस एजेज द्वितीय के पश्चात शासक हुआ। परंतु मुद्राओं से प्रकट होता है कि एजेज प्रथम के पश्चात एजिलीसेज ना शासक हुआ। तीसरा, अपवर्मन गोडोफोजिस और एजेज दोनों के अधीनता में गवर्नर था। यह तभी संभव है जब हम दो एजेज माने। कुछ मुद्राओं पर एजेज और पेलिरिसिस दोनों के नाम मिलते हैं। इस आधार पर स्मिथ मार्शल आदि विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि प्रथम एजेज मावेश का उत्तराधिकारी नहीं वरन पेलिरिसिस का उत्तराधिकारी था। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यह होता है कि मावेश को कहाँ रखा जाए। वह एजेज प्रथम के बाद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मुद्राओं से प्रकट होता है कि एजेज प्रथम के बाद एजलिसेस ना शासक हुआ। मावेश एजलिसेस के बाद भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मुद्रा साक्ष्य से ही प्रकट होता है कि एजलिसेस के बाद एजेत द्वितीय शासक हुआ था। मावेश को हम एजेत द्वितीय के साथ भी रख सकते हैं। एजेत द्वितीय का शासनकाल लगभग 44 ईस्वी समाप्त होता है। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि यह तिथि मावेश के लिए काफी दूर पड़ेगी। ऐसी अवस्था में मावेश को एजेत प्रथम के पूर्व ही रखना उपयुक्त प्रतीत होता है। अनुमानतः बोनोनीस और मावेश समकालीन थे। जिस समय मावेश पंजाब में राज्य कर रहा था उसी समय बोनोनीस स्थान में बोनोनीस उत्तराधिकारी स्पेलिरिसिस हुआ और मावेश का एजेत प्रथम। किसी विशेष कारण का स्पेलिरिसिस और एजेत प्रथम ने अपनी सम्मिलित मुद्राएं चलाई। संभव है कि दोनों संबंधी हों अथवा एकमात्र मित्र। मार्शल महोदय का मत है कि मावेश की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेष शक्तिशाली राजा न रहा, अतः बोनोनीस ने उसका स्थान लिया और महाराज के रूप में अपनी सत्ता स्थापित की। उसने तक्षशिला पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और महा प्लेहोरोस और स्पेडेमी को गवर्नर बनाया। परंतु बोनोनीस के स्थान का संबंध मावेश की मृत्यु से न था। उससे स्वतंत्र रूप से स्थान में अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसका तक्षशिला से कोई संबंध न था। एजेत के विषय में रैप्शन महोदय के विचार नितांत अस्पष्ट है। एक स्थान पर वे स्पेलिरिसिस के सहयोगी एजेत को एजेत द्वितीय मानते हैं और उसे स्पेलिरिसिस का पुत्र बताते हैं, परंतु दूसरे स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसे एजेत द्वितीय का एजेलिसिस का पुत्र उत्तराधिकारी मानते हैं। 134 तिथि के कलवान अभिलेख और 136 तिथि को तक्षशिला सिल्वर काल लेख में एक अज अथवा ए का उल्लेख मिलता है, परंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अज अथवा ए एजेज ही था, क्योंकि अज अ अथवा ए के साथ महाराज आदि के समान कोई भी सम्मान सूचक अथवा पद सूचक शब्द नहीं मिलता। पुनः यदि एजेत था भी तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह एजेत प्रथम का या एजेत प्रथम था या एजेत द्वितीय। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त लेखों की तिथियां 134 और 136 किस संवत की हैं। मार्शल महोदय का मत है कि ये तिथियां विक्रम संवत की हैं। रैप्शन महोदय ने तो यहां तक कहा कि ईस्वी पूर्व 58 का विक्रम संवत एजेत ने ही चलाया था, परंतु कोई भी निष्कर्ष असंदिग्ध नहीं है। एजेत प्रथम ने यूनानी शासक हिपोस्टेट्स की पुरानी मुद्राओं पर अपना नाम अंकित करके पुनः प्रसारित किया था। इससे प्रकट होता है कि उसने यूनानियों के पूर्वी पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मार्शल महोदय का मत है कि उसने यमुना की घाटी को भी अपने राज्य में मिला लिया था। एजेत ने मिनेंडर की एथेनाइल किस शैली की मुद्राएं चलाई। इस आधार पर टन महोदय ने यह अनुमान किया कि एजेत प्रथम ने मिनेंडर राज्य के प्रधान क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, परंतु यह निष्कर्ष अनुपयुक्त है क्योंकि मिनेंडर राज्य का प्रधान क्षेत्र काबुल घाटी था। अतः एथेनाइल की शैली की मुद्राओं के प्रचार से यही अनुमान किया जा सकता है कि एजेत प्रथम ने काबुल की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया था। वस्तुतः एजेत प्रथम की मुद्राएं इस क्षेत्र में पाई भी गई हैं। इससे उनके काबुल घाटी पर आधिपत्य के अनुमान की पुष्टि होती है। एजेलिसेज एजेत प्रथम की कुछ मुद्राएं दो कोटियों में विभक्त की जा सकती हैं। पहली प्रथम कोटि की मुद्राओं पर यूनानी में एजेत का नाम है और खरोष्टी में एजेलिसिस का नाम। दूसरा द्वितीय कोटि की मुद्राओं पर यूनानी में एजेलिसिस नाम है और खरोष्टी में एजेत का। इससे प्रकट होता है कि एक समान एजेत स्वामी था और एजेलिसिस उसके अधीन उसका सहयोगी, परंतु कालांतर में एजेलिसिस स्वामी बन गया और एजेत उसके अधीन उसका सहयोगी। इसमें तरह भंडारकर महोदय दोनों मुद्राओं के एजेत को एक व्यक्ति नहीं मानते। उनका कथन है कि एजेत दो हुए, एजेत प्रथम और एजेत द्वितीय। पहले एजेत प्रथम शासक था और एजेलिसिस उसका अधीन सहयोगी। एजेत प्रथम की मृत्यु के पश्चात एजेलिसिस स्वतंत्र शासक बन गया और उसके एजेत द्वितीय को अपना अधीन सहयोगी बनाया। परंतु व्हाइट टेंट हेड महोदय का मत है कि एजेलिसिस की मुद्राएं कला की दृष्टि से एजेत की मुद्राओं से अधिक सुंदर है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि एजेलिसिस पहले स्वतंत्र शासक हुआ और एजेत बाद को। ऐसी दशा में दो एजेलिसिस और एक एजेत की कल्पना की जा सकती है। परंतु मार्शल महोदय का मत है कि खुदाई में सतहों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि एजेत प्रथम पहले हुआ, फिर एजेलिसिस और फिर एजेत द्वितीय। हॉफमैन और स्टैन कोनोव का मत है कि उपयुक्त दो कोटियों की मुद्राओं से दो एजेत का कल्पना नहीं करना चाहिए। वास्तव में एजेत और एजेलिसिस एक ही व्यक्ति थे, परंतु इन विद्वानों के मत को अधिकांश विद्वान स्वीकार नहीं करते। एजेलिसिस ने शियासनासीन जीएस शैली की मुद्राएं निर्मित कराई थी। मार्शल महोदय का मत है कि यह कापिश शैली थी। अतः उनका मत है कि कापिश प्रदेश निश्चित रूप से एजेलिसिस के अधीन था। इससे उसका पूर्वगामी एजेत प्रथम ही जीत चुका था। एजेलिसिस की कुछ मुद्राएं बलूचिस्तान में मिली हैं। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने अनुमान किया है बलूचिस्तान उसके अधीन था। एजेलिसिस की कुछ अन्य मुद्राओं पर हेरकुलिस का चित्र मिलता है। इस प्रकार की मुद्राएं दक्षिण अफगानिस्तान में प्रचलित थी। अतः कुछ विद्वान दक्षिण अफगानिस्तान को भी एजेलिसिस के अधीन मानते हैं। एजेलिसिस का शासन अल्पकालीन था क्योंकि उसके केवल 11 मुद्राएं मिली हैं। एजेत द्वितीय, जैसा कि पीछे कहा गया है, एजेलिसिस के पश्चात एजेत द्वितीय शासक बना। एजेत की 1921 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसमें दो एजेत की मुद्राएं सम्मिलित हैं। मुद्राओं से प्रकट होता है कि अश्ववर्मन वर्मन पहले एजे द्वितीय का गवर्नर था, परंतु बाद को वह गार्डो फॉर्नीस का गवर्नर बन गया। अस्पवर्धन का पितामह विजय मित्र था, उसका उल्लेख विनय मित्र के रूप में सिनकोट अभिलेख में हुआ है। वह मिनेंडर का सामंत था। कुछ मुद्रा ऐसी मिली है जिन पर मानिगुलस छत्रपस और जिहोड़ियस लिखा हुआ है। कुछ विद्वान मणिगुल और जिहोड़िक को एजेज के छत्रप मानते हैं, जो उसकी अधीनता में पुष्कलावती के शासन कर रहे थे। परंतु रैप्शन महोदय का कथन है कि एजेज द्वितीय के पश्चात चांदी की मुद्राएं असुंदर होने लगी थी। चूंकि जिहोड़िक की मुद्राएं सुंदर है, जिहोड़िक को एजेज प्रथम का छत्रप समझना चाहिए। तक्षशिला के शकों का पतन। तक्षशिला की शक शाखा का पतन दो व्यक्तियों के उदय के कारण हुआ, पहला फायोटीस और दूसरा गांडोफोनीज। फिलोस्टेट्स का कथन है कि 43 और 44 ईस्वी में जब अपारोनियस तक्षशिला पहुंचा था, उसने वहां फायोटीस का राज्य पाया। इसके अतिरिक्त तक एबाही अभिलेख से पता चलता है कि 103 में गांडोफोनीज पश्चिमोत्तर प्रदेश में राज्य कर रहा था। कदाचित यह तिथि विक्रम संवत की है, अतः गांडोफोनीज की तिथि 45 ईस्वी हुई। हर्सफेल्ड और टानम महोदय का मत है कि फायोटीस किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वरन अप्रतिहत का ही विकृत रूप है। यह उपाधि गांडोफोनीज की मुद्राओं पर पाई जाती है, अतः ये दोनों विद्वान फायोटीस और गांडोफोनीज दोनों ही एक ही व्यक्ति मानते हैं। इस मत का खंडन किया गया है। फायोटीस का समीकरण अप्रतिहत के साथ नहीं किया जा सकता, परंतु दोनों ही भिन्न भिन्न व्यक्ति थे। नाम से प्रकट होता है कि फायोटीस पार्थियन शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम फायोटीस ने सको से तक्षशिला जीता। कालांतर में दक्षिणी अफगानिस्तान में गांडोफोनीज का उदय हुआ और सिर्गी उसने तक्षशिला पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार एजेज प्रथम एजिलिसेस और एजेज द्वितीय का शासनकाल 20 ईस्वी से लेकर 43 ईस्वी तक रहा हो। इस तीनों शासकों ने एजिलिसेस का शासनकाल बहुत छोटा था, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है। उसकी केवल 11 मुद्राएं ही मिली हैं। छत्रप वंश। भारतवर्ष के शक नरेश पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे। उन्होंने वैशलियस, वैशलियन और महतश की उपाधियां धारण की थी। उनकी अधीनता में अनेक छत्रप राज्य करते थे। उदाहरणार्थ मावेश के चुक्ष में लियाक और पतीक नामक दो छत्रप थे। इसी प्रकार सहदौर अभिलेख में उल्लेखित नमजीत और दमजीत संभवतः एजेज प्रथम अथवा एजिलिसेस का छत्रप था। अश्पवर्मन एजेज द्वितीय का छत्रप था। पीछे कहा जा चुका है कि मणिगुल और जिहोड़िक संभवतः एजेज प्रथम और द्वितीय के छत्रप थे। शासन की यह छत्रप प्रणाली पार्शिक प्रणाली थी। फारस के बेस्तन अभिलेख में छत्रपावन का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ होता है राज्य का संरक्षक। स्पष्ट है कि इसी शब्द को छत्रप शब्द निकला है। इसी शब्द से छत्रप शब्द निकला है जिसका प्रयोग शकों ने किया। उत्तरी भारतवर्ष के निम्नलिखित छत्रप वंश विशेष उल्लेखनीय थे। पहला कापिश वंश। कापिश प्रदेश से आधुनिक कापिशिस्तान और घोरबंद तथा पाजीसीर की घाटियों के प्रदेश को समझना चाहिए। परिमियाल अभिलेख में कापिश के छत्रप वंश का पता चलता है। उसमें उल्लेखित छत्रप गढ़वियांक का पुत्र था। दूसरा पुष्पपुर वंश। काबुल संग्रहालय में एक अभिलेख संरक्षित है, जिससे पता चलता है कि पुष्पपुर में त्रिहणवर नामक छत्रप राज्य करता था। इस अभिलेख की तिथि 83 है। यदि यह विक्रम संवत की है तो त्रिहणवर का शासनकाल 25 ईस्वी के आसपास पड़ता है। तीसरा अभिसार प्रस्थ वंश। अभिसार प्रस्थ यूनानी लेखकों द्वारा वर्णित अभिसार है, जो तक्षशिला के उत्तर में था। पंजाब में एक तारम मुद्रा मिली है, जिसमें अभिसार प्रस्थ के छत्रप शिवसेन का नाम मिलता है। पंजाब के छत्रप। पंजाब में तीन छत्रप वंशों का पता चला है। पहला कुशलूक वंश। इस वंश के छत्रप लिया कुशलूक और प्रतीक का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। दूसरा मणिगुल और जिहोड़िक वंश। पीछे बताया जा चुका है कि कुछ मुद्राओं पर इन दो छत्रपों के नाम मिलते हैं। संभवतः ये एजे द्वितीय की अधीनता में पुष्कलावती में राज्य करते थे। तीसरा इंद्रवर्मन का वंश। इसका पुत्र अश्पवर्मन एजे द्वितीय और गांडोफोनीज दोनों का छत्रप रह चुका था। मथुरा के छत्रप। मथुरा में आगमन। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मथुरा में शक कब और कैसे पहुंचे। स्टेन कोनों का मत है कि जिस समय विक्रमादित्य ने मालवों में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, उस समय शकों को वहां से भागना पड़ा। तब वे मथुरा पहुंचे और उन्होंने वहां अपना नवीन राज्य स्थापित किया। टान महोदय का भी विश्वास है कि मथुरा के शक मालवा से ही वहां पहुंचे थे। अन्य विद्वान मार्शल महोदय को तक्षशिला में एक अभिलेख मिला है, जिसके अनुसार एक जिहोड़ी चुक्ष का छत्रप था। इस अभिलेख की तिथि 191 है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्राओं का जिहोड़िक और इस तक्षशिला अभिलेख का जिहोड़ एक दो भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, क्योंकि पहला मुद्राओं का जिहोड़िक पुष्कलावती का छत्रप था, परंतु तक्षशिला अभिलेख का जिहोड़िक चुक्स था। दूसरा मुद्राओं का जिहोड़िक छत्रप का पुत्र था, परंतु तक्षशिला अभिलेख का जिहोड़िक महाराज था। तीसरा मुद्राओं का जिहोड़िक एजेज द्वितीय छत्रप विदित होता है, परंतु तक्षशिला अभिलेख के जिहोड़िक की तिथि बहुत बाद की है। संभवतः यह कुषाणों का छत्रप था। यह समझते हैं कि प्रारंभ में मथुरा के छत्रप तक्षशिला के शक नरेशों की अधीनता में राज्य करते थे, परंतु शीघ्र ही वे स्वतंत्र हो गए थे। किंतु कोई भी जिसका असंदिग्ध नहीं है। हगान और हगामश संभवतः ये मथुरा के सर्वप्रथम क्षत्रप थे जिन्होंने कदाचित सम्मिलित रूप से राज्य किया था। मथुरा में इनकी मुद्राएं मिली हैं। राजवूल इनके पश्चात कदाचित राजवूल मथुरा का शासक हुआ। मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख में सर्वप्रथम इसी शासक के साथ महाक्षत्रप का प्रयोग किया गया है। इससे अनुमान होता है कि कदाचित यह स्वतंत्र शासक था। उसकी कुछ मुद्राओं का राजराज की उपाधि मिलती है, इससे भी उसकी स्वतंत्रता सत्ता का अनुमान होता है। राजवूल की मुद्राएं यूनानी नरेश स्ट्रेटो प्रथम और स्ट्रेटो द्वितीय की मुद्राओं से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि राजवूल ने सर्वप्रथम यूनानियों के प्रदेश पूर्वी पंजाब पर ही अपना आधिपत्य स्थापित किया होगा। डॉक्टर डी सी सरकार की का यही मत है। यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाए तो मानना पड़ेगा कि राजवूल ने मथुरा के ऊपर कुछ समय बाद ही अधिकार किया होगा। राजवूल की कुछ मुद्राओं पर मथुरा के पूर्वगामी हिंदू नरेशों की मुद्राओं का भी भारी प्रभाव दृष्टिगत होता है। मुद्राओं के प्राप्ति स्थानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजवूल का राज्य पूर्वी पंजाब से लेकर मथुरा तक विस्तृत था। खरोष्ट मथुरा लया कैपिटल पर युवराज खरोष्ट का नाम मिलता है। स्टोन कोनोव इसे राजवूल का ससुर मानते हैं और कहते हैं कि मावेज के पश्चात राजराज के पद का यही उत्तराधिकारी बना। फिल्ट के मतानुसार यह राजवूल की पुत्री का पुत्र था, परंतु कुछ विद्वान उसे राजवूल का पुत्र भी मानते हैं। कुछ दिन छत्रप रहने के पश्चात संभवतः राजवूल के जीवन काल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः उसके अभाव में राजवूल का दूसरा पुत्र सोडाश क्रमशः छत्रप और महाछत्रप बना। कुछ मुद्राएं मिली हैं जिन पर खरोष्टी में छत्रप पक्रोष्ट अर्टस पुत्रसा लिखा हुआ है। इससे प्रकट होता है कि खरोष्ट के अर्थ नामक एक पुत्र भी था। कदाचित यह सोडास के शासनकाल में छत्रप रहा होगा। सोडास, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, राजवूल के पश्चात सोडास मथुरा का शासक हुआ। मथुरा लायन कैपिटल में उसे एकमात्र छत्रप कहा गया है, परंतु अमोहिनी वोटिव टैबलेट में यह वहाँ छत्रप कहा गया है। इस टैबलेट में 72 तिथि दी हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजवूल की मृत्यु के पश्चात 72 तिथि तक सोडास महाक्षत्रप हो गया होगा। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि यह 72 तिथि शक संवत की तिथि थी। यदि हम इस मत को स्वीकार कर ले तो यह निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि 150 ईस्वी के लगभग मथुरा पर सोडास का राज्य था, परंतु यह संभव नहीं है। प्रसिद्ध लेखक टॉलमी लगभग इसी समय हुआ था। इसके वर्णन में लिखा है कि मथुरा के ऊपर सोडास का नहीं वरन कैसिपिराइड का आधिपत्य था। टॉलमी ने इंडोसीथिया और कैपिस्ट्राइड राज्य का पृथक पृथक वर्णन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कैप्सिराइड राज्य शक राज्य न था। बोयार महोदय के अनुसार कैप्सिपिराइड राज्य कुषाण राज्य था। पुनः टॉलमी के ही वर्णन से प्रकट होता है कि 150 ईस्वी के लगभग शक राज्य में एकमात्र पैलेटीन अबेरिया और सेरेटीन सम्मिलित थे। शक राज्य की यही सीमा रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से भी विधि होती है। ऐसी दशा में स्पष्ट हो जाता है कि 150 ईस्वी के लगभग मथुरा नरेश पर शकों का अधिकार न था। अतः उपयुक्त अमोहिनी वोटिव टैबलेट की 72 तिथि को शक संवत की तिथि मानना ठीक नहीं है। स्टेन कोनो का मत है कि 72 तिथि विक्रम संवत की है, अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। इनके अनुसार सोडास का समय 14 ईस्वी के लगभग आता है। मार्शल महोदय का भी कथन है कि अमोहिनी वोटिव टैबलेट की नक्काशी की शैली में ईसा की प्रथम शताब्दी की ही प्रकट होती है। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, तक्षशिला नरेश मावेज और मथुरा के छत्र सोडास का समय एक ही है। सोडास की मुद्राएं पूर्वी पंजाब में नहीं मिलती, इससे प्रकट होता है कि उसका राज्य उस प्रदेश में नहीं था। हाँ, मथुरा में उनकी मुद्राएं भी मिली हैं और उसके अभिलेख भी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सोडास का राज्य मथुरा प्रदेश तक ही सीमित था। पतन मथुरा के छत्र वंश का पतन संभवतः कुषाणों के उत्थान के परिणाम स्वरूप हुआ था। कनिष्क के शासनकाल के तीसरे वर्ष के सारनाथ अभिलेख में महाछत्रप खल्लपलान और छत्रप मन्नपर का उल्लेख है, जो कनिष्क की अधीनता में राज्य कर रहे थे। संभवतः ये राजवूल वंश के शक थे। उत्तरी भारत के छत्रपों की जाति प्रायः समस्त विद्वानों यह मानते हैं कि कभी कभी यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि अमूक शासक पार्थियन जाति का है अथवा शक जाति का, अथवा दोनों जातियों का सम्मिश्रण। ऐसी परिस्थिति में उत्तरी भारत के छत्रपों की जाति के विषय में भी मतभेद हैं। इन विषय में नामों के आधार पर ही निष्कर्ष नहीं मिलता। उदाहरणार्थ मावेज का नाम शक है, परंतु पाती का नाम पार्थियन। इस आधार पर टॉम्स महोदय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि उत्तरी भारत के छत्रप शक और पार्थियन जातियों के सम्मिश्र थे। हरिवंश के पहलवों को शमशुधारी कहा गया है, परंतु राजवूल और नहपान वंश के राजा मुद्राओं पर कभी कभी शमशु धारण किए हुए नहीं दिखाई देते। इस आधार पर डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि ये राजा पहलवंशी न थे, इन्हें शक ही मानना चाहिए। उत्तरी भारत के छत्रप पांडवों की शक वंशीयता का एक अन्य प्रमाण भी मिलता है। मथुरा लॉयन कैपिटल में सर्वश पुए शब्द मिलते हैं। इससे प्रकट होता है कि राजभूल आदि नरेश तक जाती थी। पश्चिमी भारत के छहरात वंश, पश्चिमी भारत में जिस छत्र वंश का उदय हुआ यह इतिहास में छहरात वंश के नाम से प्रख्यात है। इस वंश की जाति के विषय में भी मतभेद है। रैप्सन इसे पहलव मानते हैं, परंतु स्टेन को नोशक इस वंश के राजा नहपान का दामाद उश्वदात अपने को शक कहता है। अतः संभव है कि स्वयं नहपान भी शक हो। पेरिप्लस के लेखक में नहपान का उल्लेख किया है। इससे पहलव नरेशों के युद्धों का भी उल्लेख किया है, परंतु उसने कहीं भी नहपान को पहलव नहीं कहा है। इससे तो यही प्रकट होता है कि वह शक था। डॉक्टर राय चौधरी ने छहरात का समीकरण शक जाति करताई के साथ किया है, जिसका ताल में उल्लेख करता है। छहरात वंश को शक मानना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, परंतु इसके ऊपर पार्शिक पालवों का प्रभाव अवश्य पड़ता था। स्वयं नहपान नाम किस प्रभाव को प्रकट करता है? पार्शिक भाषा में नह का अर्थ है जन और पान का अर्थ है संरक्षित। दक्षिण में आगमन पेरिप्लस पालवों के युद्धों और राज्य विस्तार का उल्लेख करता है। इससे अनुमान होता है कि पालवों के आक्रमण और विजयों के परिणाम स्वरूप ही शक क्षत्रपों को दक्षिण की ओर आना पड़ा था। दक्षिण में आने के पश्चात इन क्षत्रपों ने अपनी मुद्राओं पर उत्तर की खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। इससे भी उसका उत्तर के से संबंध प्रकट होता है। छहरात वंश के शासक भूमक की मुद्राओं पर बाण, डिस्कस और व्रज दिखाई देते हैं। यही वस्तुएं पेलिरी, सेज और एजिट प्रथम की सम्मिलित मुद्राओं पर भी मिलती है। इस तथ्य से भी छहरातों और उत्तरी शकों के बीच संबंध का अनुमान किया जा सकता है। पग्र्युषण, रैप्सन और भंडारकर का मत था कि पश्चिमी भारत के छहरात कुषाणों के अधीन थे। मत की पुष्टि में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसका खंडन किया जा सकता है। नहपान के एक नासिक अभिलेख से प्रकट होता है कि काशार्पण और स्वर्ण का अनुपात 1:35 था। रैप्सन का कथन है कि स्वर्ण कुषाणों की मुद्रा थी, चूँकि नासिक अभिलेख के अनुसार यह छहरात राज्य में चलता था, अतः छहरात कुषाणों के अधीन थे, परंतु इस कथन में कोई बल नहीं है। स्वर्ण को एकमात्र कुषाणों की मुद्रा मानना उचित नहीं है, क्योंकि वह भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी। परंतु यदि यह मान लिया जाए कि स्वर्ण कुषाणों की ही मुद्रा थी, तो भी इससे छहरातों के ऊपर कुषाणों का आधिपत्य सिद्ध नहीं होता। शक राजा अन्य राजाओं और अन्य कालों की मुद्राओं को भी अपने राज्य में चलने देते थे। पेरिप्लस का कथन है कि उसके समय में बेरिगाजा में पुरोगमी यूनानी नरेशों की मुद्राएं चल रही थी। दूसरा नासिक गुहा लेख 12 के एक अंश को उद्धृत करते हुए भंडारकर महोदय कहते हैं कि उसमें कुषाण का उल्लेख है। इनके मत में कुषाण नहपान की रजत मुद्रा का नाम था, जिसे उसने अपनी स्वामी कुषाण के नाम पर रखा था, परंतु यह अर्थ नितांत संदिग्ध है। शेनॉर्ड के मतानुसार कुषाण मूल किसी मुद्रा का नाम नहीं है, वरन उसका अर्थ है बहिर्जीवन के व्यय। तीसरा परात नरेशों, भूमक और नहपान के अधिकांश अभिलेखों में एकमात्र छत्रप की उपाधि मिलती है या उनकी अधीनता की सूची देती है। तथा छहरात नरेशों ने अपने अभिलेख में शक संवत का प्रयोग किया है, जिसके कारण प्रारंभ कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। कुषाणों के संवत में प्रयोग से भी छहरातों की अधीनता प्रकट होती है। इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि छहरात उत्तरी भारत से आए थे, अतः उनकी उत्तरी भारत के संवत का प्रयोग करना आश्चर्यजनक न था। इसके साथ साथ कुछ अन्य बात से भी यह प्रकट होता है कि छहरात स्वतंत्र शासक थे। पहला, छहरात नरेशों से अपने नाम से मुद्राएं चलाई, उनका यह कार्य उनकी स्वतंत्रता का द्योतक है। दूसरा, छहरातों के अनेकानेक अभिलेख मिले हैं, परंतु किसी में भी कुषाणों का नाम नहीं मिलता। तीसरा, छहरात राज्य में कुषाण मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। जो भी हो, छहरातों और कुषाणों के पारस्परिक संबंध के विषय में निश्चित रूप से यह मत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। भूमक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। इसका इतिहास एकमात्र उसकी मुद्राओं से ज्ञात होता है। मुद्राएं गुजरात, काठियावाड़ और पालव के प्रदेशों में पाई गई हैं। इससे प्रकट होता है कि इन प्रदेशों पर भूमक का अधिकार था। भूमक की मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि के अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि भी प्रयुक्त हुई है। भूमक और नहपान की मुद्राओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर रैप्सन महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भूमक नहपान से पहले हुआ था। इन दोनों में क्या संबंध था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु दोनों शासकों की मुद्राओं पर अंकित अक्षरों के रूपों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों के बीच में अधिक काल व्यतीत नहीं हुआ था। परंतु यह संदेहपूर्ण है, भूमक को प्रथम शताब्दी में रखा जा सकता है। नहपान छहरात वंश का सबसे बड़ा शासक था। जैन साहित्य में इसका उल्लेख नरवाहन अथवा नरवाहक के रूप में हुआ है। प्लस में मैम्ब्रेश का उल्लेख है। इस विद्वान ने इसे नैम्ब्रेश पढ़ते हैं और इसका समीकरण नहपान से करते हैं। कम से कम 8 गुहा लेखों में इसका नाम आया है। इसकी बहुसंख्यक मुद्राएं मिली हैं। इन सब साक्ष्यों ने नहपान की जीवन घटनाओं पर प्रचुर प्रकाश पड़ा है। राज्य विस्तार, नहपान और उसके दामाद ऋषभ दत्त के अभिलेख महाराष्ट्र में मिले हैं ऋषभदत्त के अभिलेखों में पारस, पारक, भृगुकच्छ, दामन, दशपुर, प्रभास और पुष्कर आदि स्थानों का उल्लेख है। नहपान की मुद्राएं महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ और अजमेर में मिली है। इन साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नहपान के अधिकार में महाराष्ट्र का कुछ भाग, मालवा प्रांत, गुजरात, काठियावाड़ और अजमेर पर था। संभवतः इसी समय सातवाहनों को महाराष्ट्र छोड़कर आंध्र प्रदेश में जाना पड़ा। राज्य विस्तार करने में उसे कौन कौन से युद्ध करने पड़े थे इसका हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। हम इसके शासन काल के एक ही विजय का ज्ञान है। नासिक गुहा लेख 10 से प्रकट होता है कि अपने मित्र उत्तम भद्रों की मालव आक्रमणकारियों के विरुद्ध सहायता करने के लिए उश्वदात गया था। इस युद्ध में मालव पराजित हुए, वे भाग खड़े हुए और उनमें से बहुसंख्यक बंदी बना लिए गए। ये मालव कौन थे इस प्रश्न पर भी मतभेद है। कुछ विद्वान उन्हें मालव बताते हैं, कुछ उन्हें दक्षिणी भारत के मलय पहाड़ों के निवासी बताते हैं। नेपान के अभिलेखों में एकमात्र इसी युद्ध और विजय का वर्णन है। राजधानी पेरिप्लस का उल्लेख है कि नेपान की राजधानी मिन्नगर थी या एरिओक में थी। इंद्रजी का मत है कि एरिओक के अपरांतिका समझना चाहिए। मिन्नगर में कुछ विद्वान मंदोसोर मानते हैं और कुछ विद्वान दोहद। डॉक्टर जायसवाल का मत है कि नेपान की राजधानी भड़ौच थी। इस मतों के विरुद्ध कुछ लोग एरिओक का समीकरण आर्यक से करते हैं। उनके अनुसार नेपान की राजधानी दक्षिणी अथवा पश्चिमी भारत में नहीं वरन उत्तरी भारत में थी। उपाधियां मुद्राओं पर नेपान के साथ राजन की उपाधि पाई जाती है। 41, 42 और 45 तिथियों के नासिक अभिलेख नहपान को एकमात्र क्षत्रप कहते हैं, परंतु इसके मंत्री अय्यम और 46 तिथि का अभिलेख नहपान का महाक्षत्रप कहता है। इससे यह ना समझना चाहिए कि 45 तिथि तक नहपान किसी ब्राह्य सत्ता की अधीनता में शासक करता था अथवा 46 तिथि में भी स्वतंत्र शासक बना था। वास्तव में छोटी उपाधियां सदैव अधीनता सूचक नहीं होती। गुप्त काल में सामान्य तथा महाराजा की उपाधि अधीनता सूचक समझी जाती थी। फिर भी मनुकुंवर पाषाण प्रतिमा अभिलेख में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के नाम के साथ उनका प्रयोग किया गया है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि नहपान के साथ भी राजन और छत्रप उपाधियों का प्रयोग उसकी अधीनता की सूचना नहीं देता। नहपान का काल, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, नासिक अभिलेख में नहपान की 41, 42 और 45 तथा गुन्नार अभिलेख में 46 तिथियां मिलती हैं। विद्वानों के इस बात पर बड़ा मतभेद है, ये तिथियां किस काल की हैं? इस विषय में प्रमुखता तीन मत है। पहला, ये तिथियां नहपान के शासन के वर्ष हैं। दूसरा, ये तिथियां विक्रम संवत की हैं। तीसरा, ये तिथियां शतक संवत की हैं। प्रथम मत को पोषकों ने जीन से इनके हरिवंश को अपना प्रमुख आधार बनाया है। इनके अनुसार नरवाहन के 42 वर्ष तक राज्य किया था, परंतु किसी भी अन्य साक्ष्य से नहपान के इतने ही दीर्घकालीन शासन की सूचना नहीं मिलती। पुनः किसी भी शक नरेश ने अपनी तिथियां अपने शासन के इन वर्षों में नहीं दी है। तब मत विभाजन विक्रम संवत और शतक संवत के बीच में ही है। विक्रम संवत के पोषकों में विशेष उल्लेखनीय है कनिंघम, दुर्विया और आर डी बनर्जी। इनके विरुद्ध शतक संवत का प्रतिपादन करने वाले विद्वानों में प्रमुख है वायर, रैप्सन और भंडारकर। आरडी बनर्जी का कथन है कि चस्टन के वंश के राजा रुद्रदामन प्रथम के अभिलेख की तिथियां शतक संवत में है, अतः नवान की तिथियां भी उसी संवत में नहीं हो सकती। बनर्जी के मतानुसार रुद्रदामन के अंधी अभिलेख से प्रकट होता है कि उसने 130 ईस्वी तक नासिक को जीत लिया था, परंतु यदि हम नहवान की अंतिम तिथि 46 को शतक संवत की तिथि माने तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 124 ईस्वी के पश्चात गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का नासिक पर अधिकार रहा। ऐसी अवस्था में उस पर रुद्रदामन का अधिकार कैसे रह सकता था? परंतु बनर्जी महोदय के तर्क में कई दोष हैं। पहला, अंधी अभिलेख से यह सिद्ध नहीं होता कि 130 ईस्वी तक रुद्रदामन की समस्त विजय समाप्त हो चुकी थी। आंधी अभिलेख से तो उसकी एकमात्र कक्ष विजय की ही सूचना मिलती है। दूसरा, रुद्रदामन ने सातवाहनों को पराजित अवश्य किया, परंतु उसका कोई प्रमाण नहीं कि विजय के पश्चात उसने सातवाहनों से नासिक का प्रदेश भी छीन लिया था। संभवतः उसने एकमात्र मालवा और कोंकण के प्रदेश ही छीने थे। अतः यदि हम नहमान और रुद्रदामन दोनों की तिथियों को संवत की तिथियां माने तो कोई हानि नहीं होती। आरडी बनर्जी और दुर्विया ने अपना अन्य तर्क देते हुए कहा है कि नहमान की तिथियां शतक संवत में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ऐसा मानने से नहमान के पतन और रुद्रदामन के उत्कर्ष के बीच एकमात्र 5 वर्ष ही रह जाते हैं और इस अल्पकाल में समस्त निम्नलिखित घटनाएं नहीं रखी जा सकती। पहला, नहवान के शासन का अंत। दूसरा, 6 रातों का विनाश। तीसरा, जस्टन का छत्रप बनना, छत्रप के रूप में शासन करना, महाछत्रप के रूप में शासन करना। चौथा, जयदामन का छत्रप बनना, छत्रप के रूप में शासन करना, कदाचित महाछत्रप बनना और कदाचित महाछत्रप के रूप में शासन करना। पांचवा, रुद्रदामन का सिंहासनासीन होना और अपना शासन प्रारंभ करना। परंतु इस तर्क में कई दोष है। पहला, यह अनुमान करने का कोई भी कारण नहीं है कि चस्टन वंश का उदय 6 रात वंश के आमूल विनाश के पश्चात हुआ। यह संभव है कि जिस समय 6 रात वंश मालवा और सौराष्ट्र में राज्य कर रहा था, उसी समय चस्टन वंश कच्छ में राज्य कर रहा रहा था। दूसरा, कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जयदामन कभी भी महाक्षत्रप बना था। संभवतः वह अपने पिता जस्टन के जीवन काल में क्षत्रप के रूप में ही मर गया था। यही कारण है कि समस्त अभिलेखों में उसके लिए एकमात्र क्षत्रप का ही प्रयोग मिलता है, महाक्षत्रप का नहीं। अंडव अभिलेख में जहाँ जस्टन और रुद्रामन के साथ तो राजा की उपाधि मिलती है, परंतु जयदामन के साथ नहीं। तीसरा, जस्टन के राज्याभिषेक और रुद्रामन के बीच अधिक समय नहीं बीता था, क्योंकि अंधो अभिलेख के अनुसार दोनों साथ साथ शासन कर रहे थे। ऐसी अवस्था में 4-6 वर्षों में उपयुक्त बची हुई घटनाओं का होना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण के शकुन नरेशों की भांति छहरात वंश ने 20 संवत का ही प्रयोग किया था। पतन जोगत थम्बी मुद्रा भांड में नयापान की बहुसंख्या मुद्राएं मिली हैं। इनमें 2/3 मुद्राएं ऐसी हैं जिन पर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपना नाम मुद्रित करवाकर पुनः प्रसारित करवाया था। इससे प्रकट होता है कि गौतमी पुत्र ने नयापान को पराजित किया था। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र के लिए अकराट वंश निर्वंशी कर्म उपाधि मिलती है। इससे भी छहरात वंश के राजा नयापान की पराजय की पुष्टि होती है। पहले अरकट, अवंती, अनूप, अपरान और सुराष्ट्र नयापान के अधीन थे, परंतु नासिक अभिलेख में इन्हें गौतमी पुत्र सातकर्णी के अधीन बताता है। अतः इनसे भी नयावान की पराजय का संकेत मिलता है। मुद्रा भांड में नयावान के अतिरिक्त किसी भी अन्य छहरात नरेश की मुद्रा नहीं मिलती है। इससे सिद्ध होता है कि नयावान ही इस वंश का अंतिम राजा था। चस्टर वंश छहरात वंश के समान दक्षिणी भारत में एक अन्य दर्शक वंश का उदय हुआ, जो इतिहास में चस्टन वंश के नाम से प्रख्यात है। इस चस्टन का राज्य प्रमुखता उज्जैन और काठियावाड़ में था, इससे इसे उज्जैन और काठियावाड़ का शक वंश भी कहते हैं। जाति चस्टन वंश शक वंश था। इसके कुछ साक्ष्य हैं। पहला, चस्टन वंश का संस्थापक यशोमतिक था, यह नाम सिथियन शक है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन चस्टन वंशी नरेश को बाण ने अपने हर्षचरित में शक कहा है। तीसरा, चस्टन वंश के सबसे बड़े नरेश महाक्षत्रप रुद्रामन की पुत्री अपने को आद्रमकवंशी कहती है। यह वंश ईरान की कार्दमक नदी से संबंधित प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में यह अनुमान किया जाता है कि चस्टन वंश ईरानी शकों से संबंधित थे। यह शमोतिक अंधो अभिलेख से प्रकट होता है कि यशमोतिक चस्टन का पिता यशमोथा इथियन भाषा में यशमोकार्त भूमि होता है। इसी आधार पर लेबी और कोनो ने यह मत प्रस्तुत किया था कि यशमोतिक और भूमक एक ही व्यक्ति थे, परंतु एकमात्र नाम की समता के आधार पर दो व्यक्तियों का एक होना आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों पर्यायवाची नाम है, परंतु फिर भी वे दो भिन्न भिन्न गुप्त सम्राट थे। यशमोतिक के नाम के साथ राजा आदि की कोई उपाधि नहीं मिलती, उनकी मुद्राएं या अभिलेख भी नहीं मिलते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सामान्य व्यक्ति था। चस्टन यशमोतिक का पुत्र था। इसी ने अपने पराक्रम से अपने वंश को राजपद दिया। इसी को जैन तथा काठियावाड़ के क्षत्रप वंश का संस्थापक मानते हैं, परंतु इसका कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं है। क्या चस्टन वंश कुषाणों के अधीन था? कुछ विद्वानों के मतानुसार छहरात वंश की भांति चस्टन वंश भी कुषाणों के अधीन था। इस मत के निम्नलिखित आधार हैं। पहला, चस्टन वंश ने विदेशी उपाधि छत्रप का प्रयोग किया। दूसरा, इस वंश ने उत्तरी भारत की खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। तीसरा, मथुरा में हिवेशिक के देवकुल में चस्टन नामक एक मूर्ति मिली है। इसका समीकरण चस्टन ने किया गया है, परंतु ये तर्क निर्बल है। छत्रप उपाधि एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग यह सिद्ध कर सकता है कि चस्टन वंश का संबंध उत्तरी भारत के शकों से था। पुनः चस्टन का समीकरण संदिग्ध है। यदि यह समीकरण ठीक भी हो तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि चस्टन कुषाणों के अधीन था। चस्टन वंश का अभिलेखो कुषाणों का उल्लेख नहीं है। इस वंश के नरेशों ने स्वतंत्र रूप से अपनी मुद्राओं का निर्माण किया था, अतः ये स्वतंत्र शासक प्रतीत होते हैं। राज्य विस्तार ताल्मीक के कथनानुसार चस्टन का उज्जैन पर अधिकार था। उसको कुछ मुद्राओं पर प्राप्त उज्जैन चिन्ह भी इस बात का प्रमाण है। उसकी कुछ अन्य मुद्राएं पर चैन्य चिन्ह भी मिलता है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उसने सातवाहनों के कुछ प्रदेश जीते थे। आंध्रोभिलेख से प्रकट होता है कि वह कच्छ तथा समीपवर्ती कुछ अन्य भूखंडों का शासक था। उसकी मुद्राएं जूनागढ़ और गुजरात में प्राप्त हुई हैं, अतः ये प्रदेश भी उसके अधीन थे। चस्टन के पुत्र जयदामन की मुद्राएं पुष्कर में प्राप्त हुई हैं। जयदामन कभी भी महाक्षत्रप न बना था, वह अपने पिता के जीवन काल में ही मर गया था। अतः पुष्कर प्रदेश चस्टन के शासन काल में क्षत्रप राज्य में सम्मिलित हो चुका था। इस राज्य में कुछ प्रदेश ऐसा था कि जिस पर नयापान शासन कर चुका था। अधिकांश विद्वानों का मत है कि चस्टन नयापान के पश्चात हुआ था और उसके क्षत्रपों के पतन के पश्चात तक शासन पुनर्स्थापना की थी। प्रारंभ में व्यूलर महोदय का मत था कि नेपाल और चश्तन दोनों समकालीन थे, परंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने स्वयं अपना मत त्याग दिया। बावन तिथि 130 के अंधोभिलेख में निम्नलिखित वाक्य मिलता है, राज्ञा चश्तनसा वशोमित पुत्रस राज्ञा रुद्रामा जयदम पुत्रश वर्षे 250। डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर आर जी मजूमदार के मतानुसार इस उद्धरण का अर्थ है, यशोतिक के पुत्र राजा चश्तन और जयरामन के पुत्र राजा रुद्रामन के शासन काल में 92 वर्ष में। ये विद्वान कहते हैं कि इस उद्धरण को देखने से पता चलता है कि चश्तन और रुद्रामन ने साथ साथ राज्य किया था। एलन और दुब्रिया महोदय ने इस मत का खंडन इस आधार पर किया है, चश्तन और रुद्रामन के बीच में च नहीं है, अतः उन दोनों का सम्मिलित शासन सिद्ध नहीं होता। डॉक्टर राय चौधरी का कथन है कि अनेक मुद्रा अभिलेखों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें दो नामों के बीच च नहीं मिलता है, उदाहरणार्थ खतपान, हिगानस, हगामशस, हरामयश और कलिपय। डॉक्टर आर डी बनर्जी भी चश्तन रुद्रामन के सम्मिलित शासक को नहीं मानते। उनका कथन है कि कच्छ के अभिलेख सुदूरवर्ती थे, विषक वंशियों की प्रथाओं और उनके पारस्परिक संबंधों को न जानते थे। उन्हें भली बात यह ज्ञात न था कि चश्तन रुद्रामन में क्या संबंध था, इसी से उन्होंने अभिलेखों में उन दोनों के बीच पौत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कच्छ के अभिलेखों की इस अज्ञानता का एक उदाहरण देते हुए बनर्जी महोदय ने कहा है कि शक वंश का मां क्षत्रप की उपाधि का प्रयोग करता था, राजा की उपाधि का नहीं, परंतु कच्छ के अभिलेख यह तथ्य न जानते थे, इसी से उन्होंने चश्तन और रुद्रामन के साथ राजा की उपाधि लगा दी है। जयदामन, पीछे बताया जा चुका है कि अंधो अभिलेख में जयदामन के साथ राजा की उपाधि नहीं मिलती, उसकी मुद्राओं पर स्वामी और छत्रप की उपाधियां मिलती हैं, परंतु माँ छत्रप की नहीं। इस आधार पर ब्यूलर और भंडारकर महोदय ने यह मत प्रतिपादित किया था कि जयदामन के समय में सातवाहनों की विजय के परिणाम स्वरूप राज्य का पतन हो गया था, इसी कारण जयदामन को लघु उपाधियां धारण करनी पड़ी थी। इन विद्वानों के अनुसार इस मत की पुष्टि रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जिसमें कहा गया है कि रुद्रामन ने स्वयं माँ छत्रप की उपाधि अधिगत की थी। उसका अर्थ यह हुआ कि रुद्रामन के पुरोगामी नरेश के समय माँ छत्रप पद का विलोप हो गया था और रुद्रामन ने अपने बल पर उससे उसे पुनः प्राप्त किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय के परिणाम स्वरूप तक राज्य के कुछ प्रांत भले ही निकल गए हों, परंतु उससे जयदामन की लघु उपाधि का कोई संबंध नहीं। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि जयदामन की मृत्यु अपने पिता चश्तन के जीवन काल में ही हो गई थी, से वह महाक्षत्रप अथवा सदन शासक न बन सका था। रही जूनागढ़ अभिलेख की बात तो वह रुद्रामन की प्रशस्ति है, स्वयं मदिगतः महाक्षत्रप नामक का कोई विशेष अर्थ नहीं है, वह रुद्रामन के बल पौरुष अथवा विजय का ही द्योतक है। कुछ ताम्र मुद्राएं ऐसी मिली है जिन पर हाथी और उज्जैनी चिन्ह उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि में संभवतः यदन अक्षर प्रतीत होते हैं। नाम अपूर्ण है, रैप्सन का अनुमान है कि कदाचित पूरा नाम जयदामन था। यदि ऐसा है तो जयदामन का उज्जैन के साथ विशेष संबंध सिद्ध होता है। 130 के अंधोभिलेख में चश्तन के साथ रुद्रामन शासन करते हुए दिखाया गया है। इससे प्रकट होता है कि स्थिति तक जयदामन मर गया था। रुद्रामन इतिहास में माँ छत्रप रुद्रामन प्रथम के नाम से प्रख्यात है। साहित्य में इसका नाम अनेक बार आया है। अंधोभिलेख से प्रकट होता है कि उसने चश्तन के साथ शासन किया था। उस अभिलेख में चश्तन और रुद्रामन दोनों के साथ राजा की उपाधि का प्रयोग समान रूप से हुआ है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उस समय भी रुद्रामन चश्तन की अधीनता में शासन न कर रहा था। कदाचित दोनों ने अधिकार समानते स्पार्टा में द्वैराज्य की प्रथा थी। कौटिल्य ने अपने अर्थास में भी इसका उल्लेख किया है। उसे द्वैराज्य प्रणाली का ज्वलंत उदाहरण हमें चश्तन और रुद्रामन के साथ मिलता है। तिथि अंधौ अभिलेख की तिथि 52 शक संवत अर्थात 130 ईस्वी है। समय रुद्रामन चश्तन के साथ सिंहासनासीन था, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि रुद्रामन 140 ईस्वी के बाद सिंहासनासीन हुआ, क्योंकि 140 ईस्वी के लगभग लिखे गए अपने भूगोल में तालमी उज्जैन के साथ राजा चश्तन का भी उल्लेख करता है। परंतु यहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि तालमी ने भूगोल लिखा है, इतिहास नहीं। कदाचित दोनों शासकों में से उनमें वयोवृद्ध शासक चश्तन का ही नाम लिखना अधिक उचित समझा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रामन की प्रशस्ति है। उसकी तिथि 52 शक संवत अर्थात 150 ईस्वी है। इससे प्रकट होता है कि रुद्रामन ने कम से कम 150 ईस्वी तक अवश्य राज्य किया। मुद्राएं रुद्रामन ने अपने चांदी की मुद्राएं निर्मित कराई थी। समस्त मुद्राओं में उसके लिए महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इन मुद्राओं में उसके पिता जयदामन का नाम भी मिलता है। कुछ मुद्राओं पर जयदामन पुत्रश लिखा है और कुछ पर जयदामन पुत्रश। बाद वाली मुद्राओं पर रुद्राम रुद्रदामन की आकृति वृद्धावस्था की सी लगती है। इससे प्रकट होता है कि वह दीर्घकालीन शासन के पश्चात मराठा राज्य विस्तार। अंधो अभिलेख से प्रकट होता है कि चष्टन और रुद्रदामन सम्मिलित रूप से कच्छ प्रदेश पर ही राज्य कर रहे थे। जूनागढ़ अभिलेख से निम्नलिखित प्रदेश रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत सिद्ध होते हैं। पहला पूर्व और अपर आकर तथा अवंती, दूसरा अनुपनिभूत, तीसरा आनर्त, चौथा सुराष्ट्र, पांचवा स्वंभ्रा, छठवां मरु, सातवां कच्छ, आठवां सिंधु सौवीर, नवां कुकुर और दसवां अप्रांत, ग्यारहवां निषाद, बारहवां और कुछ अन्य प्रदेश। इन प्रदेशों में सुराष्ट्र, कुकुर, अप्रांत, अनूप और अक्रामंती के प्रदेश गौतमी पुत्र सातकर्णी के अधीन थे। अतः स्पष्ट है कि रुद्रदामन ने उन्हें गौतमी पुत्र के किसी उत्तराधिकारी से जीता होगा। जूनागढ़ अभिलेख का कथन है कि रुद्रदामन ने दक्षिणापद के राजा सातकर्णी को दो बार पराजित किया, परंतु संबंध की निकटता के कारण उसका नाश नहीं किया। भंडारकर का मत है कि सातकर्णी स्वयं गौतमी पुत्र सातकर्णी था, परंतु यह मत ग्राह्य नहीं है। गौतमी पुत्र ने स्वयं छह रातों को पराजित किया था का प्रमाण अभिलेख और मुद्राओं दोनों से मिलता है, परंतु वह स्वयं शको द्वारा पराजित किया गया था अथवा उसके जीवन काल में किसी शत्रु ने उसके राज्य के कुछ प्रदेशों को छीन लिया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। रुद्रदामन प्रथम के उत्तराधिकारी दामगसत प्रथम, रुद्रदामन प्रथम के पश्चात दामगसत प्रथम उसके राज्य का उत्तराधिकारी बना। यह नाम उसकी मुद्राओं पर मिलता है, परंतु उसके वंश के कालांतर के लेखों में उसका नाम दामजद मिलता है। मुद्राओं से ही सिद्ध होता है कि वह अपने पिता के अधीन में छत्रप रहा था। अपने पिता को मृत्यु के पश्चात जब वह मां छत्रप बना तब वह प्रौढ़ हो गया था। अपनी मां छत्रप की मुद्राओं पर वह प्रौढ़ावस्था में ही प्रदर्शित किया गया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उसका शासन अल्पकालीन था। जीवदामन और रुद्रसिंह प्रथम, रक्षण का मत है कि दामगसत प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जीवदामन और भाई रुद्रसिंह प्रथम में सिंहासन के लिए युद्ध हुआ। 189 से 80 ईस्वी में जीवदामन महाक्षत्रप रहा। उसके पश्चात दो वर्ष तक कोई भी महाक्षत्रप न हुआ। पश्चात 181 से 88 ईस्वी तक रुद्रसिंह प्रथम महाक्षत्रप रहा प्रथम, परंतु मुद्राओं से प्रकट होता है कि 188 ईस्वी में अचानक रुद्रसिंह प्रथम एकमात्र क्षत्रप रह जाता है। क्षत्रप के रूप में उसकी मुद्राएं 188 ईस्वी से 191 ईस्वी तक पाई जाती है। 191 ईस्वी में भाग्य ने फिर उसका साथ दिया और वह महाक्षत्रप बन गया। महाक्षत्रप के रूप में उसने 191 ईस्वी से 196 तक राज्य किया। रुद्रभूति आभीर और ईश्वर दत्त आभीर, इस प्रकार हम देखते हैं कि 189 से 181 तक की कोई भी तक महाक्षत्रप ना रहा। इस काल की रुद्रसिंह प्रथम की मुद्राएं मिलती हैं, परंतु उसमें वह क्षत्रप के रूप में उल्लेखित है। विद्वानों का मत है कि शकवंश के पतन का कारण आभीर सेनापति रुद्रभूति का उदय हुआ। 181 ईस्वी के गुंड अभिलेख में सेनापति द्वारा एक तालाब खुदवाने का उल्लेख है। इस अभिलेख में किसी भी महाक्षत्रप का नाम नहीं आता, एकमात्र रुद्रसिंह का उल्लेख है और वह भी क्षत्रप के रूप में। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में सत्ता रुद्रभूति आभीर के हाथ में चली गई थी और रुद्रसिंह प्रथम उसके अधीन क्षत्रप हो गया था, परंतु शीघ्र ही रुद्रसिंह प्रथम ने अपने वंश का पुनरुद्धार किया और 181 ईस्वी में वह पुनः महाक्षत्रप बन गया। वह 188 ईस्वी तक पद पर रहा। 188 ईस्वी से 190 तक ईस्वी तक फिर कोई भी शक महाक्षत्रप न हुआ। भंडारकर और टेकर के मतानुसार ये वर्ष दूसरे अभिनेता ईश्वरदत्त के उदय काल थे। वह दो वर्ष तक महाक्षत्रप रहा। इस काल में भी रुद्रसिंह प्रथम को आधीन क्षत्रप के रूप में कार्य करना पड़ा, परंतु 191 में रुद्रसिंह प्रथम फिर महाक्षत्रप बन गया और 196 तक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य करता रहा। 196 में कदाचित रुद्रसिंह प्रथम की मृत्यु हो गई और जीवदामन फिर महाक्षत्रप बन गया। उसने 199 ईस्वी तक राज्य किया। इस काल की मुद्राओं पर वृद्धावस्था में दिखाया गया है। रुद्रसेन प्रथम, जीवदामन की मृत्यु के पश्चात रुद्रसिंह प्रथम का पुत्र रुद्रसेन प्रथम शासक बना। 200 ईस्वी के मूलवाशा अभिलेख में वे उसे राजा महाक्षत्रप स्वामी कहा गया है। मुद्राओं से प्रकट होता है कि उसने 200 ईस्वी से 222 तक राज्य किया। सीदामन और माला युद्ध, मुद्राओं से प्रकट होता है कि रुद्रसेन प्रथम के पश्चात उसका भाई सीदामन शासक हुआ। इसका शासन केवल एक वर्ष ही रहा। 226 ईस्वी के नंदसास यूम अभिलेख में मालव नेता सोम का उल्लेख में मालव की स्वतंत्रता समृद्धि को उपलक्ष्य में सोम द्वारा किए गए यज्ञ का ही वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि मालव शक राज्य से पृथक हो गए थे और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। मालव को 226 ईस्वी से स्वतंत्रता मिली थी। अनुमान किया जा सकता है कि उसका स्वतंत्रता संग्राम 3-4 वर्ष तक चलता रहा होगा। इसी आधार पर डॉक्टर अल्टेकर का मत है कि 223 ईस्वी में कदाचित मालवों से युद्ध करते हुए सीदामन की मृत्यु हो गई थी। दामसेन सेन के पश्चात दामसेन सिंहासनासीन हुआ। यह रुद्रसिंह का तीसरा पुत्र था। मुद्राओं से प्रकट होता है कि उसने 223 ईस्वी से 236 तक राज्य किया। दामसेन के उत्तराधिकारी दामसेन के पश्चात क्रमशः यशोदामन, विजयसेन, दामजद, श्री विश्व सिंह और भर्तृदामन ने 295 तक राज्य किया। विंध्य शक्ति का उदय, डॉक्टर अल्टेकर का मत है कि 255 ईस्वी के लगभग वॉकटक विंध्य शक्ति का उदय हुआ और उसे सको से मालवा राज्य छीन लिया। अपने मत के पोषण में डॉक्टर अल्टेकर का कथन है कि मालवों ने शक मुद्राएं 240 तक मिलती हैं, परंतु अल्टेकर महोदय के विरोध में यह कहा जा सकता है कि विंध्य शक्ति को सत्ता प्राप्ति इस घटना के 15 वर्ष पश्चात हुई है। फिर यह कैसे मान लिया जाए कि 240 के विंध्य शक्ति में मालवा जीत लिया था। शैशनियन आधिपत्य 224 से लेकर 340 तक कराल का काल चकवंश के पतन का काल है। इस काल में कोई भी शक महाक्षत्रप न हुआ। विद्वानों का मत है कि समय भारतवर्ष पर शैशनियों का आक्रमण हुआ था और उन्होंने शक स्थान तथा पश्चिमी भारत के कुछ प्रदेश तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यह अधिकार शैशनियन नरेश महाराम द्वितीय के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था और शापुर द्वितीय के शासनकाल के प्रारंभिक चरण तक रहा था, परंतु धीरे धीरे भारत में शैशनियों की सत्ता निर्बल होती गई। प्रयाग स्थिति में समुद्रगुप्त के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित करने वाले उत्तर पश्चिमी प्रदेश के जिन विदेशियों का वर्णन है उनमें शैशनियन भी रहे होंगे। रुद्रसिंह तृतीय शैशनियन आधिपत्य के पश्चात शक वंश का पुनरुद्धार हुआ और वे पश्चिमी भारत में कुछ दिनों तक पुनः राज्य करते रहे। इनके अंतिम नरेश रुद्रसिंह तृतीय को पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तत्कालीन भारत की सामाजिक अवस्था, शकों का भारतीकरण। शक भारत में विदेशी विजेताओं के रूप में आए, परंतु भारतवर्ष की ग्रहण शक्ति ने उन्हें अपने साम्राज्य में आत्मसात कर लिया। धीरे धीरे वे अपनी विदेशीयता का प्रत्याग कर पूर्णतः भारतीय बन के महाभारत शक द्वीप का वर्णन करते हुए कहता है कि वहाँ वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित है और वहाँ के निवासी मिथ्याचार लोभ और ईर्ष्या से मुक्त है। महाकाव्य का वर्णन कदाचित उस समय का है जब शक द्वीप के शकों का पर्याप्त रूप से भारतीकरण हो गया था और वे ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आए थे। यही नहीं, टालमी ने शक ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। पुराणों और महाभारत का कथन है कि शकद्वीप के ब्राह्मण मग कहलाते थे। प्रारंभ में मग शकों के पुरोहित थे, परंतु कालांतर में वे भारतीय ब्राह्मणों की कोटि में परिगणित होने लगे थे। इसी प्रकार मनु शकों को विशाल क्षत्रियों की कोटि में रखते हैं। महाभारत का भी कथन है कि शक जाति प्रारंभ में क्षत्रिय थी, परंतु ब्राह्मण संपर्क से पृथक हो जाने के कारण शुद्धत्व को प्राप्त हुई। इस कथन में भी ब्राह्मण व्यवस्थाकारों का शक जाति को अपनी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लाने की चेष्टा को परिलक्षित होती है। पतंजलि के मतानुसार शक यद्यपि शुद्र थे, परंतु वे अस्पृश्य न थे। जिन पात्रों में वे भोजन करते थे वे द्विजातियों के लिए त्याज्य न समझे जाते थे। इस कथन में भी शकों को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही रखा गया है। शकों के नाम भी उत्तरोत्तर भारतीय हो गए थे। पश्चिम भारत के क्षत्रपो, जयदामन, रुद्रदामन, जीवदामन, रुद्रसेन, सीदामन आदि के नाम भारतीय हैं। अभिलेखों से प्रकट होता है कि उत्तर के शक क्षत्र बौद्ध धर्म के पोषक थे। उनके शासनकाल में मथुरा, तक्षशिला और मणिकयाल बौद्ध धर्म के केंद्र थे। कुछ अभिलेखों में नाग पूजा के भी उदाहरण मिलते हैं। एक अभिलेख में सर्पराज दधिकर्ण का उल्लेख है। एक अन्य अभिलेख मथुरा में एक नाग मूर्ति पर पाया गया है। परंतु अनेक विद्वानों का मत है कि शक भागवत धर्म के विरुद्ध थे। उत्तरी भारत के शक और कुषाण नरेश साधारणतया वासुदेव धर्म के विरोधी थे और इसी भागवत धर्म विरोधी मनोवृत्ति के कारण कदाचित विदेशी राजाओं और वैष्णव राजा चंद्रता गुप्त सम्राटों का बिगड़ा हुआ आर्थिक व्यवस्था। शक शासन के अंतर्गत भारतवर्ष के व्यापारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। विद्वानों के मतानुसार बैक्ट्रियाना के यूनानी राज्य की स्थापना के पश्चात भारत में तीन व्यापारिक मार्गों की प्रतिष्ठा हुई। पहला पाटलिपुत्र से और उज्जैन होते हुए वैदिक काजा जाने वाला मार्ग, दूसरा पाटलिपुत्र से वैशाली और श्रावस्ती होते हुए नेपाल जाने वाला मार्ग, तीसरा पाटलिपुत्र से मथुरा और सिंधु घाटी से होते हुए बैक्ट्रिया जाने वाला मार्ग। इनमें प्रथम और तृतीय मार्ग शक राज्य से होकर जाते थे। रुद्रदामन ने सिंधु सौवीर पर अधिकार करके पश्चिमोत्तर प्रदेशों से जाने वाले मार्गों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। फिल्ट के मतानुसार दक्षिणी भारत में दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग मछलीपट्टनम से प्रारंभ होता था और दूसरा विनुकोंड से कुछ दूर अलग अलग चलने के पश्चात दोनों के एक स्थान पर मिल जाते थे और फिर एक मार्ग के रूप में हैदराबाद, कल्याण, पैठान और दौलताबाद होते हुए बैरिकाजा पहुंचते थे। देश के प्रमुख व्यापारिक मार्गों तथा बंदरगाहों बैरिकाजा, बारबेरिकम, कल्याण और सोपारा आदि पर अधिकार होने के कारण शक राज्य में व्यापार व्यवसाय की बड़ी उन्नति हुई। देश के भीतरी भाग में उज्जैन, पैठान, टगारा आदि व्यापार की मंडियां थी। पेरिप्लस के कथनानुसार भारतवर्ष में विदेशों से चांदी के बहुमूल्य बर्तन, शराब, अंगराग, बहुमूल्य वस्त्र और राजा के अंतःपुर के लिए सुंदरियां मंगाई जाती। इनके बदले में यहां से मोती, हाथी दांत की वस्तुएं, सूती वस्त्र, मसाले आदि विदेशों में भेजे जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि देश के व्यावसायिक संघों में संगठित थे। नासिक अभिलेख 12 में जुलाहों के एक संघ का उल्लेख है। यह संघ बैंक का भी कार्य करता था। ऋषभ दत्त ने संघ के पास 2000 काशार्पण जमा किए थे, जिस पर संघ ने 1% प्रतिमास ब्याज देने का वचन दिया था। राज्य व्यापारियों और व्यवसायियों के ऊपर कर भी लगाता था। रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख में शुल्क का उल्लेख है। व्यापारी गमनागमन ने उपनिवेश स्थापना में भी योग दिया था। द्वारद्वीप और यवभूमि में उपनिवेश स्थापना का बीजारोपण इसी काल में हुआ। इसी समय भारतवर्ष, मध्य एशिया और चीन का पारस्परिक संबंध घनिष्ठ हुआ। पश्चिमोत्तर मार्गों में व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी संभव हो सका। संस्कृत और प्राकृत सातवाहन वंश के नरेशों ने अपने अभिलेखों तथा अपनी मुद्राओं पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, परंतु पश्चिम भारत के क्षत्रपों ने संस्कृत को प्रोत्साहन दिया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध ग्रंथात्मक गद्यात्मक संस्कृत में उत्कीर्ण है। रुद्रदामन के उत्तराधिकारियों के भी अभिलेख अधिकांशतः संस्कृत भाषा में ही हैं। संस्कृत नाटक लेवी महोदय का कथन है कि यह धारणा असंगत है कि भारतीय नाटक के ऊपर रानियों का प्रभाव है। वास्तव में यवनिका में उस पदार्थ का भी बोध हो जाता है जिससे पर्दा बनता था, जो सिंधु नदी के पश्चिम में यवन राज्य में प्राप्य था। लेवी महोदय का मत है कि संस्कृत नाटक का शक काल में उज्जैनी में विकास हुआ। इस विद्वान के कथनानुसार संस्कृत नाटक में शकार का चरित्र वास्तव में विदेशी शक नरेशों के प्रति भारतीयों की उपेक्षा का परिणाम है। इसी भावना से प्रेरित होकर भारतीय नाटककार शकार को उपहासात्मक रूप में प्रदर्शित करते थे। संगीत काव्य और नाटक को प्रोत्साहन देने के साथ साथ शकों ने संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। रुद्रदामन प्रथम गांधर्व विद्या में प्रवीण था। मातंग ने अपनी बहुद्देशी में शकमिश्रित और साकच्छ नामक संगीत का उल्लेख किया है। ज्योतिष कदाचित इसी समय शक माध्यम के द्वारा यूनानी ज्योतिष का भारत में विकास हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान शकों के ऊपर यूनानी और पारसिकों का बड़ा प्रभाव था, अतः भारतवर्ष में वे दोनों ही संस्कृतियों के सम्मिश्रण को लेकर आए। उत्तरी शकों की मुद्राएं भी यूनानी मुद्राओं का अनुकरण करती हैं, परंतु उनके साथ साथ अनेक शक नरेशों के नाम पारसिक पहलवी विदित होते हैं। उनके शासन की छत्र प्रणाली भी पारस से ही आई थी। इन सांस्कृतिक विचारधाराओं को लेकर जब शक भारतीय संस्कृति के संपर्क में आए तो भारतवर्ष के ऊपर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस प्रभाव ने भारतवर्ष की रूढ़िवादिता को भारी धक्का पहुंचाया और यह नवीन परिस्थिति में नवीन रूप धारण करने के अनुकूल बन सका। पहलवों का इतिहास बड़ा विवादग्रस्त है। न तो इसके राजाओं के विषय में असंदिग्ध रूप से अधिक कहा जा सकता है और न इसके कालक्रम के विषय में। इनका इतिहास शकों के साथ इतना घुल मिल गया है कि कभी कभी यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि अमुक राजा शक है या पहलव। फिर भी उपलब्ध मुद्राओं और अभिलेखों की सहायता से विद्वानों ने इनका इतिहास निर्मित करने की चेष्टा की है। विनोनीत पहलव राजवंश का सर्वप्रथम राजा विनोनीत प्रतीत होता है। इसने आरकोशिया और सिस्तान में अपनी शक्ति की स्थापना की। रैप्सन ने इसे पूर्वी ईरान का शासक मानते हैं। इस विद्वान का कथन है कि वानोनीज का उदय मिथ्रिडेट्स द्वितीय के पश्चात हुआ। वानोनीज ने महाराज रजरजस्य महतस्य की उपाधि धारण की, अर्थात महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। ऐसा प्रतीत होता है कि वानोनीज मावेश का समकालीन था। जिस समय वानोनीज सिस्तान में राज्य कर रहा था उसी समय मावेश पंजाब में। इसकी कुछ मुद्रा यूक्रेटाइडीज वंश की मुद्राओं के अनुकरण पर है। उन पर उनके भाइयों स्पेलिरिसिस और स्पेलिहोरिस तथा भतीजे स्पेलिगदमीज के नाम मिलते हैं। स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों ने वानोनीज को राजकार्य में योग दिया था। संभवतः ये वानोनीज के राज्य के विभिन्न प्रदेशों के गवर्नर थे। स्पेलिरिसिस वानोनीज के पश्चात स्पेलिरिसिस सिंहासन पर बैठा। इसकी कुछ मुद्राओं पर सामने की ओर यूनानी लिपि में इसका और पीछे की ओर खरोष्ठी लिपि में एजेज के नाम लिखे हैं। इससे कुछ विद्वानों में यह निष्कर्ष निकाला है कि शक राजा एजेज प्रथम पहलव सम्राट स्पेलिरिसिस की अधीनता में राज्य करता था, परंतु यह भी संभव है कि दोनों संबंधी हो अथवा एकमात्र मित्र और किसी विशेष कारण से दोनों ने सम्मिलित मुद्राएं चलाई हो। गाडोफोनीज यह पहलव वंश का सबसे प्रतापी राजा था। 103 तिथि के तख्ते बाही अभिलेख से प्रकट होता है कि यह पश्चिमोत्तर प्रदेश में राज्य कर रहा था। उसमें इसे गुद्दुहवर कहा गया है। संभवतः यह तिथि विक्रम संवत की है। अतः गाडोफोनीज 45 ईस्वी में राज्य कर रहा था। यह तिथि उसके शासन की 26वें वर्ष की थी। अतः वह 19वीं में सिंहासन पर बैठा होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रारंभ में गाडोफोनीज और गुद्ध दोनों ऑर्थोगेनीज के गवर्नर थे, परंतु कालांतर में गाडोफोनीज अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अन्य विद्वान गुद, गुदन, गुदेफर, गुहर, गाडोफोनीज आदि नामों को गाडोफोनीज के ही रूपांतर मानते हैं। टान महोदय गाडोफोनीज और पोयोट्रीज को एक ही व्यक्ति मानते हैं, परंतु यह असंगत प्रतीत होता है। ईसाई धर्म का प्रसिद्ध प्रचारक टॉम्स गाडोफोनीज के शासन काल में भारत आया था। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु इस मत का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संत टॉमस गाडोफोनीज के दरबार में गया था। गाडोफोनीज के उत्तराधिकारी लोहाइजन का मत है कि गाडोफोनीज की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा एब्डगेसस राजा बना। एब्डगेसस के पश्चात पकोरी सिंहासन पर बैठा। मुद्राओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सिस्तान और पंजाब इसके अधीन थे। रैप्शन शासन का मत है कि पकोरिस पश्चिमी पंजाब में और सेम्पेरीज सिस्तान में शासन करते थे। इसके पश्चात पहला साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। पहला साम्राज्य के पतन के कारण, पहला साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं। पहला, ऑडोफोनीज के पश्चात पहला वंश में कोई शक्तिशाली और योग्य शासक न हुआ। दूसरा, धीरे धीरे सामंतों की शक्ति बढ़ गई। गोडोफोनीज के समय में ही कुछ सामंतों ने महाराज राजराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी। उसकी मृत्यु के पश्चात वे पूर्ण निरंकुश हो गए और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तीसरा, पेरिप्लस का कथन है कि पहलवों में आपसी झगड़े होते रहे थे, इनसे उनकी शक्ति को हास हुआ होगा। चौथा, फिलोस्टेटस का कथन है कि बर्बर जातियों का सामना करने के लिए गोडोफोनीज ने बर्बर लोगों की सहायता ली थी। यह बर्बर जातियों से कुशाणों का तात्पर्य है। कुशाणों ने पहला राज्य पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। 122 तिथि के पंजतर अभिलेख से सिद्ध होता है कि उन्होंने काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया था। 136 तिथि के तक्षशिला अभिलेख से प्रकट होता है कि उन्होंने तक्षशिला को ही हस्तगत कर लिया था। कुशाण नरेश कुजुल कैडिफिसेस भीम कैडिफिसेस और कनिष्क के आक्रमणों ने पहला राज्य को पूर्ण विनाश कर दिया। राज्य विस्तार, पहला, गोडोफोनीज की कुछ मुद्राएं ऑटोगेनीज की मुद्राओं से मिलती जुलती हैं। इस आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि गोडोफोनीज का पूर्वी ईरान पर अधिकार था। दूसरा, ओरेडस प्रथम और टाबिनस द्वितीय नामक पार्थिया नरेशों की कुछ मुद्राओं पर गोडोफोनीज का चिन्ह अंकित है। इस आधार पर रैप्सन और मार्शल का मत है कि पार्थिया साम्राज्य किसी स्थान तथा कुछ अन्य भाग गोडोफोनीज के साम्राज्य में थे। तीसरा, चीनी लेखक फॉय का कथन है कि काबुल प्रदेश पार्थिया के अधीन था। इस आधार पर कुछ विद्वानी अनुमान करते हैं कि काबुल घाटी पहलो नरेश गोडोफोनीज के अधिकार में थी। इन विद्वानों का यह भी मत है कि काबुल घाटी के अंतिम यूनानी शासक हर्मियस ने कुशाण नरेश कुजुल कैडिफिसेस के साथ गोडोफोनीज के विरुद्ध संधि की थी। इसी से कुछ मुद्राओं पर उन दोनों के नाम है, परंतु इस संधि के होते हुए भी गोडोफोनीज ने काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया था, परंतु इस विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। चौथा, गोडोफोनीज की कुछ मुद्राएं शक शैली की हैं। संभव है कि गोडोफोनीज ने शकों को पराजित करके पश्चिमी पंजाब पर अधिकार कर लिया हो। पांचवा, पेरिप्लस सैडनीज नामक एक राजा का उल्लेख करता है जिसके अधिकार में सुराष्ट्र और बेरिगाजा के प्रदेश हैं। मार्शल महोदय सैडनीज को गोडोफोनीज का गवर्नर सैडनीज बताते हैं और इस आधार पर कच्छ और काठियावाड़ को गोडोफोनीज के अधीन बताते हैं, परंतु यह मत असंगत है क्योंकि पेरिप्लस का सैडनीज सातवाहन नरेश सुंदर सातकर्णी था। उपयुक्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पश्चिमी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, काबुल घाटी, सिस्तान और पार्थिया का कुछ भाग गोडोफोनीज के अधीन था। गोडोफोनीज के गवर्नर अपने विशाल राज्य के विभिन्न प्रदेशों में गोडोफोनीज ने अपने गवर्नर नियुक्त किए थे। उनमें कुछ के नाम उपलब्ध होते हैं। पहला, अश्ववर्मन, यह पहले अजय द्वितीय का गवर्नर था, परंतु बाद को इसने गोडोफोनीज के अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ विद्वानों के अनुसार यह स्वात घाटी का गवर्नर था। दूसरा, स्पेंडनीज और सतवस्त्र, इनके नाम गोडोफोनीज की मुद्राओं पर मिलते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये तक्षशिला के गवर्नर थे। तीसरा, एडगेसस, यह गोडोफोनीज का भतीजा था जो संभवतः पूर्वी ईरान का गवर्नर था। चौथा, डियोनिसियस, मार्शल इसे गोडोफोनीज के अधीन चक्षु प्रदेश का गवर्नर बताते हैं। इसकी कुछ मुद्राएं भी मिलती हैं जिन पर जूनी लिखा हुआ है। टन महोदय के अनुसार तक्षशिला अभिलेख का जिहोड़िक गोडोफोनीज का गवर्नर था। सैडनीज और सतवस्त्र ने महाराज राजराज की उपाधि धारण की थी। इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि गोडोफोनीज के कुछ गवर्नर बड़े शक्तिशाली थे और वे प्रायः स्वतंत्र शासकों के रूप में राज्य करते थे।